आप सबका इस सप्ताह के कार्यक्रम में स्वागत है। सो मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं कि अगर आपको ये चुनने का मौका मिले कि भगवान का संग करना है या भक्त का संग करना है, तो किसका संग करना है? हाँ, भक्त का संग। क्यों? भक्त ही भगवान के पास लेके जाएंगे। तो लेकिन जब भक्त भगवान के पास लेके जाएंगे, जब भगवान ही मिल गए, तो फिर भक्त की क्या जरूरत है? नहीं, भक्त ने जहां पे लेके जाना है वही सामने खड़े हैं, तो फिर हाँ सॉरी नहीं, लालच क्या? अगर लिफ्ट में बैठ के पहुंच गए तो सीढ़ियों पे कौन चढ़े? गुरु के बिना ज्ञान नहीं मिलता, इसका मतलब क्या है? अच्छा, तो ज्ञान से होगा क्या? ज्ञान से भगवान मिलेंगे? भगवान तो मिल रहे हैं। मेरा क्वेश्चन मैं दोबारा दोहरा देता हूं कि भगवान खड़े हैं और भक्त खड़े हैं, तो किनका चुनाव करोगे आप? भगवान का। अब बात बनी है ना, क्यों भगवान का चुनाव करके क्या करोगे? पप्पी लोगे? अरे भगवान का, भगवान के लिए चलो। एक डिवोटी कई वर्ष पहले मेरे को मिले, बॉम्बे जाता था तो मेरे वहां पे पहचान भी किसी एक वक्त से, तो मैं गया एक बार बॉम्बे किसी काम से, तो वो मिला मुझे डिवोटी। उसने कहा कि मैं प्रभु जी पिछले हफ्ते पंडरपुर गया था। वेरी नाइस। तो वहां पे विट्ठल जी के किन के विग्रह हैं? विट्ठल जी के विग्रह हैं। तो वहां पे एक अजीब सा माहौल है कि वो आप पैसे वैसे दो तो आपको भगवान के विग्रह के एकदम पास जाने देते हैं, आलिंगन करने देते हैं। तो उसने कहा मैं वहां पे गया, वो पंडे से मैंने थोड़ी सेटिंग वेटिंग की, वो मुझे अंदर ले गया ऑल्टर के। मैंने कहा फिर क्या हुआ? कह रहा मैं भगवान के एकदम पास पहुंच गया। मैंने कहा फिर क्या हुआ? तो उसने कहा मैंने भगवान का आलिंगन किया। मैंने कहा उसको ये क्या किया? आलिंगन कर लिया भगवान का। तो मैंने कहा तुम्हारे सारे कलमश खत्म हो गए क्या? भौतिक इच्छाएं खत्म हो गई? कह रहे नहीं खत्म हुई। तो मैंने कहा फिर विग्रह का दूषित क्यों किया तुमने? आगे तुम्हें आलिंगन करके मिला क्या? सो हमारे शास्त्रों में एक कहावत आती है, बिल्कुल इसके विपरीत है, तो मैं वो कहावत का सहारा लेके आपको एक्सप्लेन करूंगा कि मैं क्या कहना चाहता हूं। तो हमारे शास्त्रों में कहा है कि स्त्री से, स्त्री संघ से ज्यादा खतरनाक किसका संग है? इस दुनिया में सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव अगर कोई संग है तो स्त्री का संग है। तो क्वेश्चन खड़ा हो गया कि क्या स्त्री के संग से भी कोई बहुत ज्यादा घातक संग है क्या? हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि स्त्री आग के समान है, पुरुष मक्खन के समान है। अगर पुरुष स्त्री का संग करेगा तो जैसे आग का संग किया मक्खन ने, पिघल जाएगा, खत्म हो जाएगा, ऐसे ही पुरुष अगर स्त्री का संग करेगा तो उसको, अगर अनुचित ज्यादा संग कर रहा है, धर्म के विरुद्ध जाकर संग कर रहा है, तो खत्म हो जाएगा। तो क्वेश्चन आया कि स्त्री का संग इतना खतरनाक है, क्या इससे भी खतरनाक कोई संग है? क्या कहते हो आप? स्त्री के संग से ज्यादा खतरनाक क्या संग है? हाँ, नास्तिकों का, कुछ और बताओ, कुछ और बताओ। तो इसका उत्तर दिया कि स्त्री का संग करने से ज्यादा खतरनाक है स्त्री का संग करने वाले का संग करना। आप बोलो ये क्या बात है, स्त्री के संग से ज्यादा खतरनाक है स्त्री का संग करने वाले का संग करना। क्यों? अगर कोई व्यक्ति अबोध है, उसको कुछ पता नहीं है, स्त्री का संग कर लिया क्या कर लेगा? उसको पता ही नहीं है दुरुपयोग कैसे होगा। लेकिन अगर कोई स्त्री संगी है जिसको पता है कि क्या दुरुपयोग कर सकते हैं, उसका संग कर लिया तो दिमाग खराब हो जाएगा। जैसे रामायण में उदाहरण आता है, एक ऋषि थे ऋषिशृंग, उनके नाक पे गेंडे की तरह सींग उगा हुआ था। तो उन्होंने महाराज रोमापाद की पुत्री से विवाह किया था। वो एक्चुअली में अडॉप्टेड पुत्री थी, वास्तव में वो महाराज दशरथ की पुत्री थी, रोमापाद महाराज ने गोद लिया था उनसे मांग के। तो जब ऋषिशृंग मुनि जो है वो जंगल में तपस्या कर रहे थे, उन्होंने कभी लाइफ में स्त्री नहीं देखी थी, कभी स्त्री नहीं देखी थी उन्होंने जिंदगी में। उनके जो पिता थे उन्होंने ऋषिशृंग मुनि को कभी स्त्री के आसपास फटकने नहीं दिया, उसको पता ही नहीं था स्त्री क्या होती। तो रोमापाद महाराज के राज्य में अकाल पड़ गया, तो पता चला कि वो अकाल खत्म होगा जब ऋषिशृंग जो मुनि है वो रोमापाद महाराज के राज्य में पधारेंगे और उनकी पुत्री से विवाह करेंगे तो अकाल खत्म हो जाएगा। अब उनको लेके कौन आए? उनको लेके आने का मतलब है कि जो ऋषिशृंग मुनि है उनके पिता का क्रोध सहना। तो रोमापाद ने कुछ वैश्याएं भेजी वहां पर जंगल में। तो जब ऋषिशृंग मुनि के पिता लकड़ियां वकड़ियां इकट्ठी करने गए थे, किसी काम से गए थे, तो वो जाके उससे मिली ऋषिशृंग मुनि से। तो ऋषिशृंग ने कहा कि मतलब आप तो बहुत सुंदर पुरुष हो, कहां से आए हो, कहां रहते हो? उसको नहीं पता कि वो स्त्री है, स्त्री संगी नहीं था ना वो, उसको पता ही नहीं था क्या हो रहा है। तो वो जो वैश्याएं हैं वो उसको अपने शिविर में ले गई, उसको बिठाया, अच्छे अच्छे पकवान खिलाए और उसको गले से लगाया, उसको बहुत अच्छा लगा। तो उसका मन विचलित हो गया ऋषिशृंग का, उसने कहा यार ऐसे फ्रेंड्स मुझे आज तक नहीं मिले। उसे अभी तक भी समझ नहीं आ रही थी कि पुरुष नहीं स्त्री है, कुछ स्त्री नाम की चीज भी होती है, उसको नहीं समझ में थी। तो उसने कहा ऐसा मुझे अच्छा कभी लगा नहीं, तो कहां रहती हो तुम, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा, साथ चल, है ना। लेकिन क्या वो दुरुपयोग कर पाए? दुरुपयोग नहीं कर पाए, उन्हें पता नहीं था क्या हुआ, है ना। लेकिन अगर किसी लंपट व्यक्ति का, व्यभिचारी व्यक्ति का संग कर लिया तो हमारा जो चरित्र है, हमारी नैतिकता का नाश कर देगा, है ना। वो हमें बताएगा कि अपने घर में रहने से ज्यादा सुख है व्यभिचार के अंदर, क्योंकि उसमें एक रिस्क है, उसके अंदर एक एडवेंचर है। तो क्यों तुम घर में पड़े हो, चलो थोड़ा सा एडवेंचर। तो जिस तरह से एक स्त्री संगी व्यक्ति बता सकता है कि स्त्री का उपयोग कैसे होगा, उसी प्रकार से एक भक्त बताएगा कि अगर भगवान मिल गए तो करना क्या है। मिल गए भगवान आपको, अब भगवान करेंगे अच्छा भाई क्या चाहते हो, आपको को पता ही नहीं क्या चाहते हो। भगवान पूछेंगे अच्छा तुम्हें पता है कि मैं क्या चाहता हूं, तो हमें वो भी नहीं पता भगवान क्या चाहते हैं। तो भगवान कहेंगे यार बीच में कहां घुस गया, साइड पे हो जा भैया, बोलेंगे नहीं बोलेंगे, है ना। इसलिए अगर भगवान और भक्त में किसी का चुनाव करना हो तो जो भक्त है वो भक्त का चुनाव करेगा। हमारे शास्त्र उदाहरणों से भरे पड़े हैं। भगवान ने जब भी किसी डिवोटी को दर्शन दिए खुश होकर उसकी तपस्या से, और भगवान क्या बोलते हैं दर्शन देते हैं, तो भगवान कहते हैं वर मांगो, क्योंकि भगवान का दर्शन कभी व्यर्थ नहीं जाता। भगवान अगर दर्शन देंगे तो भगवान जरूर बोलेंगे कि भैया कुछ वर मांगो, उस समय आपकी इच्छा हो या नहीं हो आपको वर मांगना पड़ेगा। कई बार भक्त मना कर देते हैं, नहीं नहीं हमें कुछ नहीं चाहिए। भगवान कहते हैं मुझे पता है तुम्हें कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम वर मांगो। तो भगवान को खुश करने के लिए आपको वर मांगना पड़ेगा। तो आप भागवतम चैतन्य चरितम उठाकर देख लो कितने उदाहरण है वहां पर कि भगवान ने दर्शन दिए और उन्होंने क्या मांगा भक्तों ने वरदान में, कि प्लीज मुझे आप अपने भक्तों का संग दीजिए, भक्तों का संग दीजिए। क्यों भक्तों का संग दीजिए? क्योंकि भक्तों के संग में रहकर मैं आपको संतुष्ट करने की, आपको प्रसन्न करने की और बहुत सारी कलाएं सीख सकता हूं। आपने कृपा करके मुझे दर्शन दे तो दिए, लेकिन अभी मुझे बहुत कुछ सीखना बाकी है। आप अनंत हैं, आप विभु हैं, मैं अणु हूं, मैं कभी भी पूरी तरह से आपको संतुष्ट नहीं कर सकता, लेकिन मैं अच्छे से ट्राई तो कर सकता हूं। तो अच्छे से ट्राई करने की ट्रेनिंग कहां से मिलेगी? वो ट्रेनिंग मिलेगी भक्तों के साथ रहकर। दूसरी बात यह है कि कई बार क्या होता है कि भगवान का संग कर लिया, भगवान का संग करते करते भगवान को ऑर्डिनरी समझना शुरू कर देते हैं, है ना। भगवान के साथ रह रहे हैं लेकिन समझ ही नहीं पा रहे कि भगवान है। जैसे यदुवंशी हैं, यदुवंशी भगवान कृष्ण के साथ रह रहे हैं, साथ खा रहे हैं, साथ खेल रहे हैं, साथ उठ रहे हैं, साथ बैठ रहे हैं, साथ सो रहे हैं, लेकिन क्या यदुवंशी कृष्ण को भगवान मान रहे हैं? आप क्या कर रहे हो? आप थोड़ा प्लीज सीरियसली बैठो प्लीज। हाँ, तो क्या यदुवंशी कृष्ण को भगवान मान रहे हैं? नहीं। तो भागवतम में उदाहरण दिया गया है, भागवतम में बताया गया कि आपको पता है कि जो चंद्रमा है पहले सूर्य में समुद्र में छिपा हुआ था, है ना। समुद्र मंथन हुआ तो चंद्रमा बाहर आया, पता है आप लोगों को, है ना। तो जब चंद्रमा समुद्र में विराजमान थे तो आसपास उनके क्या घूम फिर रहे थे? मछलियां। तो वो मछलियां क्या सोच रही थी चंद्रमा को देख के? वो सोच रहे थे यार बड़ी सुनहरी मछली है। उसको नहीं पता मछली को कि ये चंद्रदेव है। तो भागवतम ने कहा कितना दुर्भाग्य है, और भागवतम में यह बताया गया कि कितना दुर्भाग्य है यादवों का कि कृष्ण साथ में है और यादव क्या सोच रहे हैं बहुत महान पुरुष हैं, लेकिन कोई ये नहीं सोच रहा कि ये भगवान है। कृष्णस्तु भगवान स्वयं, ये कोई नहीं सोच रहा यादव। कितना बड़ा दुर्भाग्य है, घर की मुर्गी दाल बना नहीं कहते हैं, नहीं कहते हैं। चैतन्य चरितमृत में हमें उदाहरण मिलते हैं, दो उदाहरण मैं आपको बताऊंगा चैतन्य चरितमृत से। चैतन्य महाप्रभु गए संन्यास लेने के बाद चैतन्य महाप्रभु पुरी में निवास बनाया उन्होंने। हालांकि चैतन्य महाप्रभु रहना वृंदावन में चाहते थे, लेकिन उनकी माता जो है शची देवी, चैतन्य महाप्रभु कौन है? चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण है, कलयुग में दोबारा से चैतन्य चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए भगवान कृष्ण, हम जैसे लोगों का उद्धार करने के लिए। तो चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास लिया और संन्यास लेने के बाद वो अद्वैताचार्य के घर में शची माता से मिले, और जब शची माता से मिले तो उनके चरणों में गिर पड़े। उन्होंने बोला कि मुझसे बड़ी भारी भूल हो गई, मुझे आपकी सेवा करनी चाहिए थी, लेकिन पता नहीं क्या हुआ मैंने संन्यास ले लिया। आप मुझे बताएं कि मैं क्या करूं जिससे आपको थोड़ा सा सुख पहुंच सके। तो शची देवी ने कहा कि आप प्लीज वृंदावन मत जाओ, आप अगर धाम में रहना है तो पुरी में जाके रह लो। क्यों पुरी में रह लो? क्योंकि शची देवी ने कहा कि पुरी बंगाल के पास है, तो बंगाल और पुरी में लोग आते जाते रहते हैं, बंगाल से कैलकटा, जो बंगाल है कैलकटा से पश्चिमी बंगाल से वृंदावन लोग कम आते हैं, पुरी बहुत जाते हैं। तो शची माता ने कहा कि बंगाल पुरी से कुछ ना कुछ कोई ना कोई व्यक्ति भक्त जाता आता रहेगा, तो मुझे तुम्हारा समाचार मिलता रहेगा, मेरे लिए सांत्वना की बात है, मैं सुखी हो जाऊंगी ये जानकर कि तुम ठीक ठाक। तो खैर चैतन्य महाप्रभु पुरी में उन्होंने अपना निवास बनाया। अब पुरी से चैतन्य महाप्रभु वृंदावन गए और पुरी से चैतन्य महाप्रभु एक बार दक्षिण भारत गए। तो मैं दोनों यात्राओं के बारे में आपको बताऊंगा। तो पहले मैं आपको वृंदावन यात्रा की बताता हूं। तो चैतन्य महाप्रभु वृंदावन गए, तो वृंदावन हालांकि पहले दक्षिण भारत गए थे, लेकिन मैं दक्षिण भारत वाला वृत्तांत बाद में बताऊंगा, उसका कुछ कारण है। चैतन्य महाप्रभु जब वृंदावन गए तो बहुत सारे लोग उनके साथ जाना चाहते थे, लेकिन चैतन्य महाप्रभु को सनातन गोस्वामी है, सनातन गोस्वामी और रूपा गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु के प्रमुख शिष्यों में से एक है, षट गोस्वामियों में से एक है रूपा गोस्वामी और सनातन गोस्वामी। तो जब चैतन्य महाप्रभु मिले थे रामाकेली मालदा डिस्ट्रिक्ट में रूपा गोस्वामी और सनातन गोस्वामी से पहली दफा, तो चैतन्य महाप्रभु वृंदावन जा रहे थे, उनके पीछे करोड़ों लोग चल रहे थे, और जहां जहां चैतन्य महाप्रभु अपने चरण कमल रखते थे लोग उनकी चरण रज लेने के लिए पागल हो जाते थे, पूरी सड़क खोद डालते थे। जहां चैतन्य महाप्रभु ने पैर रखा लोग खोदना शुरू कर, उनकी चरण रज का एक कण मिल जाए। तो सनातन गोस्वामी और रूपा गोस्वामी ने बोला कि हमारी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप वृंदावन जाओ तो अकेले जाना, इतने सारे लोग लेके जाओगे तो डिस्टर्बेंस होगी। चैतन्य महाप्रभु का बात तो सही है नहीं? चैतन्य महाप्रभु वापस पूरी चले गए, रामकेली से कनाई नाटशाला गए, एक जगह है कनाई नाटशाला, आपको मैं नाम बोल रहा हूं आपको कुछ समझ नहीं आ रही है नाम क्या है, लेकिन कभी आप लोग जब चैतन्य चरितामृत पढ़ोगे, जब आप थोड़े से अच्छे भक्त बन जाओगे, तो आपको ये जगहों के नाम अच्छे लगने शुरू हो जाएंगे, आपको पता चलना शुरू हो जाएगा कि आखिर ये स्थान कौन से हैं, उनका क्या महत्व है। तो खैर चैतन्य महाप्रभु रामकेली से कन्हैया नाटशाला गए, कन्हैया नाटशाला से वापस पूरी की ओर रवाना हो गए। तो फिर चैतन्य महाप्रभु ने सोचा कि अब की बार वृंदावन जरूर जाऊंगा और लेकिन अकेले जाऊंगा। तो जो सारे भक्त थे पुरी में चैतन्य महाप्रभु के असंख्य भक्त थे, तो उसमें से जो प्रमुख भक्त थे रामानंद राय, सार्वभौम भट्टाचार्य, स्वरूप दामोदर गोस्वामी इत्यादि जो भक्त थे, जगदानंद पंडित, उन्होंने बोला कि चलो आप अकेले जाना चाहते हो, एक भक्त तो साथ ले जाओ, आपको तो सुध-बुध रहते नहीं अपनी, आप हरे नाम लेना शुरू करोगे आपको पता ही नहीं चलेगा कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना, भोजन आप करोगे नहीं करोगे कुछ हमें चिंता सताएगी, कम से कम एक सेवक अपने साथ ले जाओ। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है एक व्यक्ति साथ ले जाऊंगा। तो सारे भक्तों ने बहुत ही बढ़िया भक्त एकदम ISI मार्का उन्होंने साथ में रवाना कर दिया, उसका नाम था बलभद्र भट्टाचार्य, ठीक है, क्या नाम था बलभद्र भट्टाचार्य, ठीक है। तो साथ गए, बहुत सेवाएं की बलभद्र ने रस्ते में चैतन्य महाप्रभु की, वृंदावन पहुंच गए, चैतन्य महाप्रभु वृंदावन में रह रहे थे। तो कुछ लोग चैतन्य महाप्रभु से मिलने के लिए आए और उन्होंने क्या बोला कि हमने सुना है कि भगवान वृंदावन में दोबारा दर्शन दे रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु ने कहा बात तो सही है नहीं, वो तो खुद ही सामने बैठे हुए हैं। वो चैतन्य महाप्रभु ने कहा अच्छा दर्शन दे रहे हैं, कहां पे दर्शन दे रहे हैं? तो उन्होंने कहा वो जहां पे कालिया दह, जहां पे भगवान ने कालिया नाग का दमन किया था, वो दोबारा से कालिया लीला कर रहे हैं। तो रात को वो लीला करते हैं वहां पर। चैतन्य महाप्रभु ने कहा अच्छा क्या लीला करते हैं? कह रहे वो कालिया के फन पर नाचते हैं। तो उसके जो कालिया के फन पे जो मणियां हैं, रत्न है, रात को चमकते हैं, उसे बहुत ही सुंदर लाल रंग की रोशनी आती है उसमें से। चैतन्य महाप्रभु का बकवास है सब। बलभद्र भट्टाचार्य सामने बैठा हुआ, उसने कहा भगवान वृंदावन में दर्शन दे रहे हैं, मैं भी देखूंगा। अरे भाई तू देख तो रहा है और कैसे देखेगा? नहीं, चैतन्य महाप्रभु उसको भगवान ने दिखाई दे रहे, बताओ मैं भी देखूंगा। वो भी जाके देखने के लिए गया। अगले दिन फिर वही लोग वापिस आए। चैतन्य महाप्रभु ने पूछा कृष्ण के दर्शन हो गए? बोला नहीं नहीं, वो ऐसे कंफ्यूजन थी, वो तो एक मछुआरा था, रात को वहां पे लैंप जला के मछली पकड़ता है, तो वो लैंप की रोशनी है जिसको सब बोल रहे हैं कि काल्या नाग के फन की उसकी मणियां है। चैतन्य महाप्रभु ने बलभद्र भट्टाचार्य को कहा ये तुम कृष्ण के दर्शन कर रहे हो, कृष्ण सामने खड़े हैं और वो कृष्ण के दर्शन करने के लिए कहीं और जा रहे हैं। इसी तरह से जब चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत की यात्रा पर गए तो उनके साथ में सारे भक्तों ने एक सुशील भक्त को रवाना किया, उसका नाम था कालकृष्ण दास। तो वो गया, सब अच्छा चल रहा था, वो सेवा कर रहा था चैतन्य महाप्रभु की, पूरे पूरी को पता था, पूरी में बच्चे बच्चे को पता था कि चैतन्य महाप्रभु श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नहीं अन्य, चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है। और भक्त बोलते थे कि पूरी में भगवान दो रूप में दर्शन दे रहे हैं, कृष्णा जगन्नाथ भगवान के रूप में और चैतन्य महाप्रभु दर्शन देते हैं। रूपा गोस्वामी ने कई श्लोक लिख दिए कि चैतन्य महाप्रभु ही कृष्ण है। सो दक्षिण भारत की यात्रा में जा रहे थे तो एक जगह चैतन्य महाप्रभु रुके एक दो दिन के लिए। वहां पर उस जगह के पास में कबीले वाले रहते थे, ये जो होते हैं ना बंजारे टाइप, है ना, वो एक कबीला वहां पे रहता था। वो कबीले वालों का नाम था भृतधारी। तो वो लोग क्या करते थे, उनका काम था लोगों को लूटना, गुलाम बना लेना, पैसा लूट लो और कोई हट्टा कट्टा उसको पकड़ के ले आओ, गुलामी कराओ उससे। अब वो अट्रैक्ट करने के लिए क्या करते थे, सुंदर स्त्रियां और धन का आकर्षण दिखाते थे। तो भृतधारी जो है कबीले वालों ने कालकृष्ण दास को सुंदर स्त्रियां दिखाई और धन दिखाया, छोड़ के चला गया चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु को छोड़ के भृतधारी के साथ चला गया। अब चैतन्य महाप्रभु ने यह वायदा किया हुआ है, मजबूर है एक्चुअली में। चैतन्य महाप्रभु ने क्या वायदा किया हुआ है, स्वल्पमपि धर्मस्य प्रायतो महत्वः। चैतन्य महाप्रभु ने यह वचन दिया है कि अगर कोई थोड़ी सी भी सेवा करेगा तो उसको मैं बड़े से बड़े खतरे से बचा लूंगा। बचाना पड़ा। चैतन्य महाप्रभु गए कबीले के अंदर और उन्होंने बोला कि मेरे भक्त को, मेरे सेवक को वापस करो। वो सब कुल्हाड़ी, धनुष बाण, तलवारें, गंडासे लेके चैतन्य महाप्रभु को मारने के लिए आए। चैतन्य महाप्रभु को क्रोध आ गया, मेरा सेवक को नहीं लौटा रहे तुम, मतलब इतनी हिम्मत हो गई तुम्हारी। चैतन्य महाप्रभु ने इच्छा की इन सबको नाश कर दे। उन लोगों के हाथ से उनके हथियार निकल गए और उन्हीं पर आक्रमण करने लगे। चैतन्य महाप्रभु नहीं चला रहे थे, अपने आप ही चल रहे थे हथियार। सारे कबीले को नष्ट कर दिया। चैतन्य महाप्रभु ने बालों से पकड़ा किसको, काल कृष्णदास को, और पकड़ के अपने साथ वापस लेके आए। अब वापस लेके आए, तब तक तो साथ में रखा हुआ था पूरी पहुंचने तक। वापस लेके आए और वापस लाके ऐसे उसको धकेल दिया दूर और बोला कि दोबारा से मैं इसकी कभी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। तो बहुत रोया काल कृष्णदास, मुझसे बड़ी भारी गलती हो गई। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने कहा मैं इसकी शक्ल नहीं देखूंगा अभी, मुझे छोड़ के ये स्त्री संग करने के लिए चला गया नहीं। तो भक्तों ने क्या किया, क्या भक्तों ने भी ठोकर मार के निकाल दिया उसको? भक्तों ने कहा कोई बात नहीं, तुम बैठो, तुम्हारे बारे में कुछ सोचते हैं। भक्तों ने आपस में विचार विमर्श करके काल कृष्णदास को किसी और सेवा में लगा दिया। तो हम इससे क्या सीख लें, हम इससे क्या सीख लें? पहली सीख क्या है कि भगवान का संग, साक्षात संग करने के लिए बहुत योग्यता चाहिए। हमारे में वो योग्यता नहीं है। अगर भगवान कभी बोले आओ मेरी डायरेक्ट सेवा करो, आप बोलो कि नहीं, मैं आपके दासों के दासों की सेवा करूंगा। किसी ने चैतन्य महाप्रभु से पूछा कि आप कौन हो, आपकी क्या पहचान है? तो चैतन्य महाप्रभु ने क्या बोला, चैतन्य महाप्रभु ने बोला कि मैं ब्राह्मण नहीं हूं, मैं क्षत्रिय नहीं हूं, मैं सन्यासी नहीं हूं, मैं गृहस्थ नहीं हूं, तो कौन हो तुम? चैतन्य महाप्रभु ने क्या बोला, गोपी भर्तुर पद कमलोर दास दासानुदास। गोपी भर्तुर, गोपी भर्तुर का मतलब क्या है, गोपियों के स्वामी। गोपियों के स्वामी कौन है, कृष्ण। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा मेरी पहचान है कि मैं कृष्ण का दास नहीं हूं, मैं कृष्ण के दासों का दास हूं। यही मानसिकता हम लोगों की होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि पहली बात है हमें नहीं पता कि भगवान की अच्छे से सेवा कैसे करनी है। जिनको पता है वो हमें भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। अगर हम भगवान के सामने डायरेक्ट चले जाएंगे, हड़बड़ा जाएंगे, कंफ्यूजन हो जाएंगे। भगवान को कंफ्यूज लोग अच्छे नहीं लगते। भगवान को ऐसा व्यक्ति चाहिए, ऐसा सेवक चाहिए जिसको एग्जैक्टली पता हो कि किस परिस्थिति में क्या करना है, नहीं? दूसरी बात यह है कि अगर हम भगवान का डायरेक्ट संग कर रहे हैं और अगर हमसे गलती हो गई सेवा में, तो कहीं पे मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। लेकिन अगर हम भक्तों के साथ रह रहे हैं, अगर हम भक्तों के सानिध्य में, भक्तों के मार्गदर्शन में अगर हम सेवा कर रहे हैं, गलतियां होती रहेंगी। ऐसा थोड़े ना कि आप में से किसी ने आज तक गलतियां नहीं की। आप में से बहुत सारे लोगों को यह भी नहीं पता कि वक्ता के आने से पहले आके बैठना चाहिए, नहीं? आप में से बहुत सारे लोग वक्ता के आने के बाद आते हो, क्योंकि आप बहुत इंपॉर्टेंट हो, लेकिन कोई कंप्लेंट नहीं करता, ठीक है अभी आप भक्ति में कदम रखा है, बच्चे हो भी आप भक्ति में, हो सकता है भौतिक दृष्टि से आपकी उम्र ज्यादा हो लेकिन भक्ति में आप लोग अभी बच्चे हो, बच्चा गलती करता है तो भक्त क्या करता है, भक्त उसको सीरियसली नहीं लेता, भक्त कह रहे हैं चलो ठीक है आ तो रहा है कम से कम फाइन कोई बात नहीं, धीरे धीरे भक्ति में जब आगे बढ़ेगा सीरियस होगा अपने आप इसको बात समझ में आ जाएगी कैसे आचरण करना चाहिए, क्या करना है क्या नहीं करना। भगवान इतना टॉलरेट नहीं करते, भगवान की सेवा में करोड़ों लक्ष्मियां, लक्ष्मी सहस्त्र शत संभ्रम सेवा मात्र, करोड़ों लक्ष्मियां भगवान की सेवा में लगी हुई हैं, भगवान किसी ऐरे गैरे की सेवा कैसे स्वीकार कर लेते हैं, करोड़ों लक्ष्मियां सेवा कर ली है बीच में हम घुस जाए क्या कर रहे हैं क्या हो रहा है नहीं। तो जब तक हमें प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं मिल जाएगी, जब तक अच्छी तरह से हम सीख नहीं लेंगे कि भगवान की सेवा में किन किन बातों का ध्यान रखना है, पूरी मेहनत से हम भगवान की सेवा में लगकर अपने आप को परिपक्व नहीं कर लेंगे तब तक हम आगे जाने के योग्य नहीं है, हकदार नहीं है। इसीलिए अगर भगवान किसी भक्त को ये पूछ ले के बोलो क्या चाहते हो, तो वो भक्त बिना हिचकिचाहट के बोलते हैं कि हमें भक्तों का संग दो। भक्ति विनोद ठाकुर ने तो यहां तक कह दिया कि आप मुझे कुत्ता बना देना, कीड़ा बना देना, लेकिन एक भक्त के घर में बनाना प्लीज, ताकि आपकी सेवा होते हुए देख सकूं मैं, आपका गुणगान होते हुए मैं देख सकूं। तो हो सकता है कभी मैं भी आपकी अच्छे से सेवा कैसे करनी है कभी मैं समझ पाऊं। ठीक है, सो आप लोग भक्तों के संग को बहुत चीपली साधारण रूप से मत लीजिए, भक्तों का संग बहुत इंपॉर्टेंट है, भक्तों का संग भक्ति की जन्म स्थली है। रामानंद राय से चैतन्य महाप्रभु ने पूछा दक्षिण भारत की यात्रा में कि भक्ति की जन्म स्थली क्या है, रामानंद राय ने बोला भक्ति की जन्म स्थली है भक्तों का संग। अगर हम भक्तों का संग करेंगे, भक्तों के मार्गदर्शन में अगर हम रहेंगे, तो हम ऐसा नहीं करना चाहिए कि भक्त को देख के छिप जाओ, है ना, बहुत सारे लोग पिलर के पीछे छिप जाते हैं, दिखाई नहीं देना चाहिए। बहुत से लोग ऐसे, बहुत सारे भक्त ऐसे हैं जो कई सालों बीत जाते हैं, कभी जाके सामने से नहीं पूछते कि आप प्लीज मुझे किसी सेवा में लगाइए, नहीं। अगर आप ऐसे किसी भक्त से आज तक नहीं मिले तो आप प्लीज अपने गिरे बाण में झांक के देख लेना, आपको तुरंत दिख जाएगा ऐसा भक्त। सो भक्तों के संग को साधारण तरीके से मत लो, भक्तों का संग एक क्षण का कुछ हिस्सा भी अगर भक्तों का संग कर लिया तो पूरा जीवन बदल के रख सकता है। पूरा जीवन कैसे बदल के रखेगा, अगर हम भक्तों के उस लेश मात्र संग को गंभीरता से लेंगे। अगर गंभीरता से नहीं लेंगे पूरा जीवन साथ बिता दो, क्या फर्क पड़ रहा है। तुकाराम की वाइफ पूरा टाइम तुकाराम के साथ रही, गंभीरता से नहीं लिया क्या फायदा हुआ, हुआ कुछ फायदा नहीं। सो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज भक्तों के संग को सीरियसली लो। भक्तों का संग वो औषधि है, भक्तों का संग वो ट्रेनिंग ग्राउंड है जहां पर आपको ये प्रशिक्षण दिया जाएगा कि भगवत धाम में जाकर आपको कैसा व्यवहार करना है, भगवान को क्या अच्छा लगता है क्या अच्छा नहीं लगता। आपको भक्तों के माध्यम से ही व्यवहारिक रूप से पता चलेगा। हरे कृष्णा।